आज है 22 जून दिन सोमवार। दिन भर के साथ मैं रेहान फजल। अफगानिस्तान की संसद पर तालिबान का हमला। संसद की कार्रवाई के दौरान जोरदार धमाका सुना गया।
वज़ाइफ़ दाखली दर मौरूद गियाबत आज़ाए मोहतरम।
मुंबई में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 100 के पार हुई और बांग्लादेश से हार के बाद धोनी की कप्तानी पर उठे सवाल।
जैसे कि वो बैटिंग कोई भी नंबर पर कर सकते हैं, मुझे लगता है कि उन्हें और उनके पास 2-3 बरस तो है।
होंगे आपके पत्रों के उत्तर भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार दिलनवाज पाशा से। काबुल में सुरक्षा बलों ने अफगानी संसद पर हमला नाकाम कर दिया है। अधिकारियों के मुताबिक सभी 7 हमलावर मारे गए हैं। 2 नागरिकों की भी मौत हुई है, जिनमें एक महिला और एक 10 साल का बच्चा शामिल हैं। 40 लोग घायल हुए हैं, इनमें 2 सांसद भी शामिल हैं। हमलावर संसद के मुख्य हाल तक पहुंचने में नाकाम रहे। हमलावरों ने पहले एक आत्मघाती कार बम धमाका किया और फिर गोलीबारी की। तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने कहा है कि यूरोपीय नेता ग्रीस को और वित्तीय मदद देने के समझौते पर आज शायद ही फैसला करें। यूरोपीय देशों के वित्त मंत्रियों की ब्रसेल्स में जारी वार्ता खत्म हो गई है। कई मंत्रियों का कहना था कि ग्रीस के ताजा प्रस्ताव देरी से आए हैं और अब उन्हें समझने के लिए वक्त कम है। कई नेताओं का कहना था कि अगले सप्ताह संभवतः गुरुवार को होने वाली वार्ता तक अंतिम फैसला टाला जा सकता है। इसी बीच यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने ग्रीस के बैंकों के लिए फिर से वित्तीय मदद बढ़ा दी है। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने कहा है कि उन्हें ग्रीस संकट पर ठोस समझौता होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा, फ्रांस और जर्मनी चाहते हैं कि ग्रीस यूरोजोन में बना रहे, लेकिन ग्रीस को भी अंतिम समझौते पर पहुंचने के लिए प्रस्ताव पेश करते रहना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम कोई आंशिक समझौता करें या ऐसा समझौता जो तय समय सीमा में बंधा हो। मैं एक वैश्विक और लंबा चलने वाला समझौते के पक्ष में हूँ। ये थे फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद के शब्द। संयुक्त राष्ट्र के जांचकर्ताओं का कहना है कि पिछले साल गजा संघर्ष के दौरान इसराइल और फलस्तीनी लड़ाके दोनों ही युद्ध अपराधों में शामिल हो सकते हैं। एक बहुप्रतीक्षित रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र की टीम ने कहा है कि उसने दोनों ही पक्षों की ओर से मानवाधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के घोर उल्लंघन की ठोस जानकारियां जुटाई हैं। जांच आयोग के प्रमुख ने कहा है कि गजा में अभूतपूर्व तबाही हुई है और यहाँ के लोग भीषण मानवीय पीड़ा से गुजरे हैं और इसका आने वाली नस्लों पर भी असर होगा। पिछले साल हुए गजा संघर्ष के दौरान 2100 फलस्तीनी मारे गए थे, जिनमें अधिकतर नागरिक थे, जबकि 73 इजरायली मारे गए थे, जिनमें अधिकतर सैनिक थे। घाना में पुलिस ने राजधानी अकरा में एक बड़ी झुग्गी बस्ती के तोड़े जाने का विरोध कर रहे हजारों लोगों पर फायरिंग की है। प्रदर्शनकारी आगजनी और पत्थरबाजी कर रहे थे। सोडोम और गोमोरा नाम से जाने वाली यह चर्चित झुग्गी बस्ती देश की सबसे पुरानी झुग्गी बस्ती है और यहां 50,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। अधिकारियों का कहना है कि झुग्गी बस्ती के बहाव को समुद्र में जाने से रोकती है, जिससे बाढ़ आ जाती है। पिछले महीने आई बाढ़ में 150 लोग मारे गए थे। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। अफगानिस्तान की संसद पर चरमपंथी हमले को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। चरमपंथियों ने काबुल में संसद परिसर में कार बम धमाका किया, लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें संसद भवन में घुसने से रोक दिया। इस हमले में 6 चरमपंथी मारे गए हैं और तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्टों का सार सुनिए हरिता कांडपाल से।
वज़ाइफ़ दाखली दर मौरूद गियाबत आज़ाए मोहतरम।
ये थे अफगानिस्तान की संसद के स्पीकर, जो नामांकित रक्षा मंत्री मसूम स्थानिकज़ई का परिचय देने के लिए कार्रवाई की शुरुआत कर रहे थे कि अचानक इस धमाके से संसद भवन की तस्वीर बदल गई। धमाका इतना जबरदस्त था कि संसद भवन में उस वक्त मौजूद सभी सांसद हड़बड़ा गए। हालांकि सांसदों को संसद भवन से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अफगानिस्तान के सांसद मोहम्मद आरिफ रहमानी भी उस वक्त संसद भवन में मौजूद थे। उन्होंने अपने अनुभव हमसे साझा किए।
दूसरे उपराष्ट्रपति को आकर नए रक्षा मंत्री का परिचय करवाना था कि अचानक जबरदस्त धमाका हुआ और संसद की छत के कुछ सजे हुए टुकड़े गिर पड़े और संसद में धूल मिट्टी भर गई। हमारे साथी चिंतित थे, रॉकेटों से शक्तिशाली धमाके किए गए।
काबुल में संसद परिसर में घुसने में कामयाब हुए चरमपंथियों ने कार से बम धमाका किया। हालांकि सुरक्षा बलों ने भी तुरंत जवाबी कार्रवाई की। संसद के आसपास के इलाके के लोग भी धमाके और गोलीबारी से सकते में थे।
मैं अपने काम में व्यस्त था जब संसद के बाहर जबरदस्त धमाका हुआ और आप अभी गोलीबारी की आवाज सुन सकते हैं। हम नहीं जानते वहाँ क्या हो रहा है।
ये थे धमाके के चश्मदीद स्थानीय दुकानदार अखरदारी के शब्द, जो अपनी आंखों देखी बता रहे थे। जहाँ संसदीय पुलिस ने चरमपंथियों को संसद भवन में घुसने से पहले ही रोक दिया, हमले में कोई सांसद घायल नहीं हुआ लेकिन 20 अन्य लोग घायल हुए हैं। ज्यादातर लोग धमाके के बाद हवा में उड़ रहे कांच के टुकड़े चुभने से घायल हुए हैं। वहीं बताया जा रहा है कि हमले में शामिल 6 चरमपंथियों को मार गिराया गया है। चरमपंथियों को मारने वाले सुरक्षाकर्मी ईसा खान ने बीबीसी से बात की।
धमाका हुआ तब मैं कंटेनर में बैठा हुआ था, सब कुछ हम पर गिर गया। इस हालत में एक बंदूक मेरे हाथ में आई, मैंने देखा कि हमलावर एक एक कर अंदर घुस रहे थे। मैंने गार्ड में बैठकर उनको उड़ा दिया। उनकी लाशें वहां पड़ी हुई हैं। उनके पास रॉकेट लॉन्चर और क्लाशनिकोव थी।
तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। इससे अफगानिस्तान और तालिबान के बीच सीज फायर को लेकर बातचीत को झटका लगा है। अफगानिस्तान की सांसद फौजिया खूफी ने कहा है कि यूरोप के देशों में तालिबान से सीज फायर को लेकर वार्ता करने का कोई मतलब नहीं है जब तक वो हमारे लोगों को यहाँ मारते रहेंगे। फौजिया खूफी ने बीबीसी को बताया,
उन्होंने रमजान का पवित्र महीना चुना और वो भी लोकतंत्र के भवन पर हमला करने के लिए। उन्होंने लोकतंत्र के भवन पर हमला किया है। सांसद हथियारबंद नहीं होते, उनके पास बंदूकें और हथियार नहीं होते। हमारे पास अपने शब्द हैं, हम सिर्फ बयान दे सकते हैं। हमारे पास कोई शक्ति है तो सिर्फ कानून बनाने की। हम सैनिक नहीं हैं। लोकतंत्र के भवन पर हमला कर तालिबान ने जता दिया है कि वो लोकतंत्र के खिलाफ हैं, वो अफगानिस्तान के विकास के खिलाफ हैं।
पिछले साल अमेरिका और नेटो सेना के अफगानिस्तान से रवाना होने के बाद देश में चरमपंथी हिंसा बढ़ी है। पिछले दिनों तालिबान ने कुंदूज प्रांत में 2 जिलों पर कब्जा कर उत्तरी अफगानिस्तान में अपने पैर जमा लिए हैं। ऐसे में काफी समय से खाली पड़े रक्षा मंत्री के पद के लिए मसूम स्थानिक जई के नाम पर मोहर लगने के दिन को चुनकर तालिबान ने अफगानिस्तान को एक खास संदेश देने की कोशिश की है।
अफगानिस्तान की संसद पर तालिबान का हमला। और अब आइए सीधे चलते हैं काबुल बीबीसी संवाददाता सईद अनवर के पास। सईद, बताइए क्या ताजा अपडेट है आपके पास?
जी, जो मालूमात अभी तक आई है, आज जो अफगान पार्लियामेंट पे हमला हुआ है, इसमें 7 हमला आवर मारे गए हैं और इसके अलावा किसी को भी जानी नुकसान नहीं हुआ है। ताहम 2 पार्लियामेंट मेंबर समेत 31 लोग घायल हुए हैं। घायलों में ज्यादातर आम शहरी हैं और 3-4 महिलाएं हैं और 3 बच्चे हैं, और इनमें से ज्यादातर लोग वो हैं जो गली कोचों में आसपास के या कुछ पार्लियामेंट के आम सी जो स्टाफ हैं वो घायल हो चुके हैं। तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। इसके अलावा अफगान सदर अशरफ गनी, साबिक अफगान सदर हामिद करजई, अफगानिस्तान में अफगान मुतहिदा की दफ्तर ने इस हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है और सदर अशरफ गनी ने इस हमले को रमजान के महीने में एक इस्लाम दुश्मनी का काम करार दिया है।
ये बताइए, तालिबान से जो सीज फायर की बात चल रही थी, उस पर क्या असर पड़ने की उम्मीद देख रहे हैं आप इस हमले से?
तालिबान ने तो पहले ही सीज फायर का जो اپیل کا افغان علماء کونسل کی جانب سے انہوں نے مسترد کیا ہے, تو بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ طالبان سیز فائر کے لیے نہ صرف تیار ہی نہیں ہے بلکہ رمضان کے مہینے میں اس طرح کے حملے کے علاوہ دوسری جانب صوبے قندوز میں انہوں نے بڑے حملے شروع کیے ہیں. گزشتہ دو دن میں آپ کو معلوم ہے کہ قندوز پرانت میں دو ضلع طالبان کے کنٹرول میں آیا ہے, اور ابھی بھی جب ہم بات کر رہے ہیں صوبے قندوز میں لڑائی جاری ہے. تو معلوم یوں ہوتا ہے کہ سیز فائر کی بات ابھی بہت دور ہے.
بہت بہت شکریہ آپ کا سعید انور کابل سے. ممبئی میں زہریلی شراب پینے کی وجہ سے مرنے والوں کا آنکڑا 102 تک پہنچ چکا ہے. ملوڑی ملاٹ کی بستی میں شوک کا ماحول ہے, لیکن کچھ لوگ اب بھی اسپتال میں بھرتی ہیں. اپنے ساتھیوں اور سہیوگیوں کی موت سے ان کے دل دہل گئے ہیں, پر اب یہ شراب کی لت چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں. ممبئی سے چرانتنا نے یہ رپورٹ بھیجی ہے.
ممبئی میں زہریلی شراب پینے کی وجہ سے مرنے والوں کا آنکڑا 102 تک پہنچ چکا ہے. کئی پریوار بکھر گئے ہیں. مالوڑی ملاڑ کی بستی میں رہنے والے لوگوں کے گھروں سے رونے کی آواز کے علاوہ اور کچھ سنائی نہیں دے رہا, لیکن کچھ لوگ اس تراسدی کا شکار ہونے سے بچ گئے ہیں. بی بی سی نے دہیسر کی میتی لائف لائن اسپتال میں بھرتی کیے گئے کچھ ایسے لوگوں سے بات کی جن کی حالت سدھار پر ہے. اب یہ لوگ زہریلی شراب سے اپنے دوستوں کی موت سے سبق لے کر شراب چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں. مان بہادر رانا ایک پلمبر ہے جن کے بچے بھی بڑے ہو چکے ہیں. انہیں 20 سال سے شراب پینے کی عادت ہے. انہوں نے بتایا کہ اب وہ کبھی شراب کو ہاتھ تک نہیں لگائیں گے. کتنے لوگ ہیں آپ کے گھر میں؟
میرا گھر میں ہے 10-12 جن.
پھر سے دارو پیو گے؟
نہیں پیے گا.
20 سال کا عادت چھوڑ دو گے؟
چھوڑ دے گا.
پکا؟
پکا.
کیا بولا بچوں نے آپ کو؟
دارو نہیں پینے کو بولا.
اپنی غلطی کی سزا بھگت رہے امن 65 سال کے ہیں اور ان کے پاس کوئی کام بھی نہیں ہے. جو کام مل جائے وہی کر لینے والے امن نے ہمیں بتایا.
ہمارے کوئی نہ پہچان والے ادھر کے مر گئے, اس لیے ہم لوگ کا ڈاؤٹ آ گیا. بولا چلو چیکنگ کرے گا, ابھی دارو کون پیے گا؟ دارو بند ہی ہو گیا تو کون پیے گا؟
دیپا کے پتی سنتوش 34 سال کی عمر میں 50 کے دکھتے ہیں. دیپا کہتی ہے کون سی پتنی اپنے پتی کو شراب چھوڑنے کو نہیں کہے گی, لیکن زہریلی شراب سے اپنے کئی جاننے والوں کی موت کے بعد اب شاید ان کے پتی سنتوش شراب سے دور رہیں گے. سنتوش نے بھی یہی اچھا جتائی.
ہاں 1.5 سال میں ایسا ہو گیا, ٹینشن میں تو دارو پی کے, ابھی دارو نہیں پیے گا, شراب پینے کا ہی نہیں ہے. تو
34 سال کے گھنشیام ہیلپر کا کام کرتے ہیں. وہ مانتے تھے کہ شراب پینے سے تناؤ کم ہوتا ہے, لیکن انہوں نے اب ایسا سوچنا بند کر دیا ہے.
میں ہیلپر کا کام کرتا, ہیوی ویٹ کا کام ہے میرا, تو لگتا تھا
دارو پینے سے طاقت آتی ہے
باڈی کو ریسٹ کے لیے. اور میرے کو پرابلم ہوئی نا یہ جس دن برسات چالو ہوئی تھی, برسات میں بھیگا بھی تھا اور ہیوی ویٹ کام کیا ہوا تھا, تو میں نے جا کے دیسی بار میں واٹر لیا پیا, پھر اس کے بعد میں ہاتھ پیر میں میرے درد ہونے چالو ہوا اور سر درد اور تھوڑا تھوڑا چکر آنے لگا, تو میں تابڑتوب ہاسپٹل میں آج آ گیا. نہیں ابھی تو ٹوٹلی بند کرنا ہے.
سیما ڈیکا گھنشیام کی پتنی ہے جو مانتی ہے کہ ابھی شاید ان کے پتی شراب چھوڑ دیں گے.
ایسے تو کوئی نہیں ہے لیڈیز جو نہیں بولتی ہو, جینٹس کو سننا چاہیے نا. اب بولا تو ہے, آگے دیکھتے باہر آنے کے بعد کیا کریں گے. وہ
زہریلی شراب پینے کی وجہ سے اجڑے پریواروں کے بیچ یا کچھ ایسے چہرے ہیں جو اپنی غلطی سدھارنا چاہتے ہیں, ان کو ملے اس موقع کو اچھے سے اور ذمہ داری کے ساتھ جینا چاہتے ہیں. چرنتنا بھٹ, بی بی سی, ممبئی.
بھارت پرشاست کشمیر میں سینکوں اور چرم پنتھیوں کے بیچ مٹبھیڑ میں 2 چرم پنتھی مارے گئے ہیں, اور پردرشنکاریوں کے خلاف سینک کاروائی کے دوران ایک یوک بھی مارا گیا, جس کے کارن کشمیر کے دکشنی ضلع پلگام میں تناؤ پھیل گیا ہے. اس بیچ بھارتی سینا کا کہنا ہے کہ جموں میں ویوادت سیما پر پاکستانی رینجروں نے بھارتی ٹھکانوں پر فائرنگ کی ہے. کشمیر میں پچھلے دنوں میں ہنسا میں کافی بڑھوتری ہوئی ہے. شری نگر سے ریاض مسرور نے یہ رپورٹ بھیجی ہے.
سینا اور پولیس کا کہنا ہے کہ یہ مڑبھیڑ کل رات سے ہی دکشنی کشمیر کے کولگام ضلع کی ریڈونی بستی میں جاری تھی, اور اس بیچ لوگوں نے گاؤں کا گھیراؤ کیے جانے کے ورودھ میں پردرشن بھی کیا. सेना के प्रवक्ता का कहना है कि मुठभेड़ में दो जवान घायल हो गए, लेकिन दोनों चरमपंथी जावेद अहमद भट्ट और इदरीस नेंगरू भी मारे गए। प्रदर्शनकारियों में से एक आम युवक आसिफ तांत्रे उस वक्त मारा गया जब मुठभेड़ के दौरान ही गोलियां चली। पुलिस ने स्पष्ट नहीं किया है कि आसिफ किस गोली से मारे गए, लेकिन कुलगाम और आस पड़ोस में सेना और पुलिस के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं।
ये सिविलियन उस वक्त शहरी खा के निकला था, फिर जब ये गली में बैठ रहा था तो बैठा हुआ था। He was fired upon by the security personnel, particularly task force according to the eyewitnesses. We want that the people responsible for civilian killing should be punished harshly.
सेना का कहना है कि ये मुठभेड़ आज सुबह ही खत्म हो गई थी, लेकिन कुलगाम की कई बस्तियों में तलाशी अभियान जारी है। शनिवार को भी सेना ने बताया कि उत्तरी कश्मीर के मसल सेक्टर में एक लंबी लड़ाई के बाद तीन चरमपंथी मारे गए। कल ही सोपोर इलाके में पुलिस की एक गाड़ी में एक संदिग्ध बम धमाका हुआ जिसमें पाकिस्तानी प्रशासित कश्मीर के रावला कोट का रहने वाला एक कैदी मारा गया। पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। सोपोर में नामालूम बंदूकधारियों द्वारा अलगाववादी कार्यकर्ताओं, पूर्व चरमपंथियों और आम नागरिकों की टारगेट किलिंग के बाद डर का माहौल है। इस बीच आज सेना ने बताया कि आज सुबह शहरी के समय पाकिस्तानी रेंजर्स ने जम्मू के आरसपुरा सेक्टर में भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित सीमा पर भारतीय ठिकानों पर हल्के हथियारों से फायरिंग की। इस घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। रियाज मसरूर, BBC, श्रीनगर।
देश दुनिया की खबरें 2400 घंटे bbchindi.com के साथ।
ये BBC है, आप दिन भर कार्यक्रम सुन रहे हैं रेहान फजल के साथ। आज सोमवार है और आज का दिन होता है आपके पत्रों का। आपके पत्रों के साथ हैं राजेश प्रियदर्शी और संदीप सोनी।
नमस्कार श्रोताओं, आज आपकी चिट्ठियों के साथ मैं हूं संदीप सोनी और मेरे साथ मौजूद हैं राजेश प्रियदर्शी।
नमस्कार।
पहली चिट्ठी ले रहे हैं जंग बहादुर सिंह की। ये आई है गोल पहाड़ी झारखंड से,
जमशेदपुर झारखंड। जी, हमारे पुराने श्रोता हैं।
बहुत पुराने श्रोता हैं और ये लिखते हैं कि मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार प्रजापति समाज पर जयपुर से नारायण बारेठ की रिपोर्ट बहुत पसंद आई और इस रिपोर्ट ने उन्हें बचपन के दिन याद दिला दिए जब दिवाली के समय कुम्हारों से मिट्टी के खिलौने खरीदते थे, लेकिन अब मिट्टी के खिलौनों का चलन खत्म सा हो गया है।
बहुत धन्यवाद जंग बहादुर जी, आपकी जो प्रतिक्रिया है और आपको नारायण बारेट की रिपोर्ट पसंद आई, इसकी जानकारी हम नारायण जी तक ज़रूर पहुंचा देंगे। नारायण बारेट अक्सर इस तरह की जो सामाजिक और मानवीय जीवन से जुड़ी जो ऐसी रिपोर्टें हैं वो करते हैं और उनको लोग पसंद करते हैं। आपको ये रिपोर्ट पसंद आई, आपका शुक्रिया।
दूसरा पत्र लेते हैं जो आया है मलकापुर ज़िला बुलढाणा महाराष्ट्र से एहसान असगर का। एहसान साहब लिखते हैं कि विवेचना हर बार काबिले तारीफ होती है और इस बार भी रेहान फजल ने निराश नहीं किया।
अच्छा।
और ये भी लिखते हैं कि रेहान साहब क्या पहले किसी जासूसी एजेंसी में काम करते थे? इतनी अंदर की बात कहाँ से निकाल कर लाते हैं? शानदार प्रस्तुति के लिए रेहान जी को धन्यवाद और इस बार का इंडिया बोल भी इन्हें काफ़ी पसंद आया।
रेहान साहब बेहतर बता पाते। रेहान साहब दरअसल उन लोगों में से हैं हमारे दफ्तर में जो सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं, सबसे ज़्यादा याद रखते हैं, सबसे ज़्यादा नोट्स लेते हैं और जो गुजरी हुई बातें हैं और ऐसी बातें जिनके बारे में लोगों को सतही तौर पर ऊपर ऊपर जानकारी होती है, उसकी तह में जाने की उनको एक आदत सी है और ख़ास बात यह है कि फिर उसको एक दिलचस्प कार्यक्रम की शक्ल में पेश कर पाते हैं। तो उनके कार्यक्रम हम लोगों को यहाँ दफ्तर में जो हम लोग उनके साथ काम करते हैं हमें भी उतने ही पसंद आते हैं जितने हमारे श्रोताओं को।
अगला पत्र ले रहे हैं भभुआ बिहार से। ये चिट्ठी हमें भेजी है BBC के श्रोता संजय कुमार ने। संजय कुमार लिखते हैं कि जब मैं पढ़ाई लिखाई करता था उन दिनों BBC खूब सुनता था, धीरे धीरे सुनना कम होता गया और अब जब वक्त मिलता है तो bbchindi.com पर आता हूँ। एक आग्रह लिख भेजा है इन्होंने कि bbchindi.com पर पुराने ऑडियो ज़्यादा से ज़्यादा हों तो अच्छा हो और संजय भाई उन पुराने ऑडियो की लिस्ट बनाकर भेजने के लिए भी तैयार हैं।
बहुत शुक्रिया आपका, मुझे खुशी है कि हमारे पुराने कार्यक्रमों में आपकी दिलचस्पी है। आपको याद होगा कि जब BBC हिंदी के 75 वर्ष पूरे हुए उस पूरे सप्ताह हमने बहुत सारे पुराने ऑडियो प्रकाशित किए अपनी वेबसाइट पे भी और हमारे सोशल मीडिया के फेसबुक पेज पर भी। आपसे आग्रह ये है कि कृपया अपने सुझाव भेजते रहें और बताएं कि आप किन पुराने ऑडियोज़ को सुनना चाहते हैं। अगर आप लिस्ट भेज सकें तो बहुत ही अच्छा, लेकिन साथ में आपको ये भी जानना चाहिए कि एक समय पर बहुत सारे पुराने ऑडियो या सारा आर्काइव अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराना तकनीकी तौर पर हमारे लिए संभव नहीं है, लेकिन जब कोई मौका होता है, जब कोई बात होती है, जैसे अभी इमरजेंसी की एनिवर्सरी आने वाली है, तो उससे जुड़े हुए जो पुराने हमारे आर्काइव के ऑडियो हैं आप पाएंगे कि वो हमारे पन्ने पर भी हैं और हमारे हमारा जो फेसबुक पेज है उस पर भी हैं, और ऐसे ही मौके मौके पर हम आपको सुनवाते रहते हैं और आगे भी जारी रखेंगे।
इसी से मिलता जुलता पत्र लिख भेजा है गंगा सिंह रावत ने रामपुर रोड हल्द्वानी उत्तराखंड से। गंगा सिंह रावत लिखते हैं कि मशहूर गजल सम्राट मेहदी हसन से परवेज आलम की बहुत साल पहले की गई बातचीत के अंश सुने इस प्रस्तुति के लिए धन्यवाद। मैं मोहम्मद रफ़ी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। आपके पास मोहम्मद रफ़ी का कोई साक्षात्कार ज़रूर होगा, है तो उसे निकालें और हमें सुनवाएं।
एक साक्षात्कार मोहम्मद रफ़ी का है जिसको मैं कभी नहीं भूल पाता। उस इंटरव्यू में मोहम्मद रफ़ी की जो सादगी है वो आपको बिल्कुल अभिभूत कर देती है। आपको समझ में नहीं आता कि एक व्यक्ति जो इतना पॉपुलर है, इतना बड़ा स्टार है, वो कैसे इतनी सादगी से, इतने भोलेपन से बात करता है, और वो ख़ास ठेठ पंजाबी लहजे में एक दो वाक्य में बहुत सीधे तरीके से जवाब देते हैं। और जहाँ कोई कठिन मुश्किल सवाल उनसे पूछा जाता था, वो कहते थे जी ये तो जो पढ़े लिखे बड़े लोग हैं वही इसका जवाब दे पाएंगे, मेरा काम तो गाना है। तो वो इंटरव्यू है हमारे पास, और जैसा इन्होंने कहा उसका जब कोई मौका होगा हम ज़रूर उसको अपनी वेबसाइट पर और अपने रेडियो कार्यक्रमों में शामिल करेंगे।
गंगा सिंह रावत ने विवेचना का भी जिक्र किया है जो 12 जून को प्रसारित हुई थी। राज नारायण बनाम इंदिरा गांधी का केस इन्हें सुनना बहुत रोमांचक अनुभव रहा, और इन्होंने एक आग्रह भी किया है कि 1965 में जो जंग हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच, उन लम्हों को भी ताज़ा करें।
बहुत ही अच्छा पत्र है, इसका समय बहुत सही है इस हिसाब से कि ये जो मोहनलाल शर्मा की विवेचना थी और काफ़ी दिलचस्प थी, जिसमें जस्टिस सिन्हा का जो फैसला था और उसके आसपास जो जुड़ी हुई चीज़ें थी उस पर काफ़ी दिलचस्प तरीके से उन्होंने बात की थी। जहाँ तक 65 की लड़ाई का सवाल है, रेहान फजल उस पर काफ़ी विस्तार से एक पूरी सीरीज़ की तैयारी कर रहे हैं, और ये मौका एक तरह से इन्होंने दिया कि मैं ये बता सकूं, तो आप इंतज़ार कीजिए, आपको 1965 की लड़ाई से जुड़ी एक नहीं कई दिलचस्प चीज़ें सुनने को मिलेंगी। आप इसी तरह से अपनी प्रतिक्रिया हमें भेजते रहिए, और बहुत अच्छा लगता है आपकी चिट्ठियां, आपके ईमेल देखकर। अगर आप हमें ईमेल से अपनी राय भेजना चाहें तो हमारा पता है hindi.letters@bbc.co.uk, और अगर आप हमें पत्र लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं BBC हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 3035, नई दिल्ली 110003 पर। नमस्कार।
नमस्कार।
आपकी चिट्ठियों के साथ थे राजेश प्रियदर्शी और संदीप सोनी। बांग्लादेश के खिलाफ कल दूसरा एक दिवसीय मैच 6 विकेट से हारने के साथ ही भारत 3 मैचों की सीरीज भी हार गया। भारत की हार के बाद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी टीम के हित में कप्तानी भी छोड़ने को तैयार हैं। कितना है दमखम अभी भी धोनी की कप्तानी और उनके खेल में, और क्यों हारा भारत, यही जानने की कोशिश की है हमारे सहयोगी आदेश कुमार गुप्त ने इस रिपोर्ट में।
डाइव मारी थी वहां पर शिखर धवन ने, लेकिन गेंद उन्हीं के शरीर के साथ छिटक कर फिर सीमा रेखा की तरफ चली गई थी।
भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने जैसा खेल बांग्लादेश के खिलाफ पहले 2 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में दिखाया, उसे देखकर उनके पुराने साथी जो अब कमेंट्री कर रहे हैं, जब वो आह भर रहे हों तो फिर आम क्रिकेट प्रेमी का कहना ही क्या। बांग्लादेश ने पहले मैच में भारत को 79 रन से और दूसरे मैच में 6 विकेट से, वो भी 54 गेंद शेष रहते हरा कर अपने समर्थकों को झूमने का मौका दे दिया।
A superb win for Bangladesh. The crowd on their feet and champion performance.
दूसरा मैच जीतने के साथ ही बांग्लादेश ने 27 साल बाद भारत से कोई एक दिवसीय सीरीज जीती। हार का सदमा भारत के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को लगा और उन्होंने एक सवाल के जवाब में कह दिया, अगर मेरे कप्तानी छोड़ने से टीम जीतती है तो मैं कप्तानी छोड़ने को तैयार हूँ। तो क्या धोनी मान रहे कि वो अकेले ही हार के जिम्मेदार नहीं है, और क्या अगर वो कप्तान नहीं रहे तो फिर टीम में बने रहेंगे? इसे लेकर भारत के पूर्व कप्तान रहे अजीत वाडेकर कहते हैं,
मुझे लगता है कि
ओडीज में और 2020 में उन्हें जो कप्तानी दिखाई थी, जैसे कप्तानी को जो क्वालिटीज चाहिए, एक कूलनेस चाहिए, बाय इंस्टिंक्ट जैसे चेंजेस करना चाहिए बॉलिंग में, और यू हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, जैसे कि वो बैटिंग कोई भी नंबर पर कर सकते हैं। मुझे लगता है कि उन्हें और उनके पास 2-3 बरस तो है।
भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज और भारत बांग्लादेश मैचों की कमेंट्री कर रहे आकाश चोपड़ा के भी सुन ले।
वो महेंद्र सिंह धोनी पुराने नहीं रहे हैं, ये बात सही है कि थोड़ा सा गिरावट आई है उनके खेल में। ये खराब होने के बावजूद आप देखेंगे कि दूसरे मैच में वही रन बना रहे थे, बहुत बढ़िया खेल रहे थे, अपने आप को 4 नंबर पर लेकर गए और खेल को बचाने या बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि अगर भारतीय क्रिकेट को आगे की तरफ जाना है तो महेंद्र सिंह धोनी का भी एक दिवसीय क्रिकेट में रोल है। कप्तान रहे बहुत बढ़िया, नहीं भी रहते तो भी बहुत बढ़िया, टीम में उनका रहना ये बात तो तय है। और दूसरी बात ना भूलें कि पिछले 10 मैच से विराट कोहली ने 50 नहीं बनाया है, तो उसका भी कई बार खामियाजा टीम भुगतती है। और अगर ऐसे में आप उनको अब वनडे की कप्तानी भी थमा देंगे तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप एक बढ़िया कप्तान ढूंढने के चक्कर में एक बढ़िया प्लेयर खो बैठे।
अब कहा यह भी जा रहा है कि भारत को एक दिवसीय सीरीज से पहले अभ्यास नहीं मिला, लेकिन जाने माने क्रिकेट समीक्षक विजय लोकपल्ली कुछ और ही कहते हैं।
क्या अभ्यास मैच होता है, पुराने जमाने में होता था क्योंकि क्रिकेट इतनी ज्यादा नहीं होती थी, आप गए नई जगह। अभी जिस ढंग से उन्होंने इंग्लैंड को हराया था वर्ल्ड कप में, उसमें आप उनके काफी संकेत थे कि बहुत इम्प्रूव टीम है वो। भारत ये मान के चल रहा था कि जैसे हम मैच जीत ही जाएंगे, जो स्टेटमेंट दे रहे थे जिस ढंग से इनके प्लेयर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके, लगता था कि ड्रेसिंग रूम में मैच जीत के आ रहे हैं। लेकिन मैच तो आपको ग्राउंड पे जीतना पड़ेगा ना, तो वहां पे बांग्लादेश बेहतर खेला आपसे, पाकिस्तान को हराया उन्होंने वनडे सीरीज में बड़ी कन्विंसिंगली। मुझे लगता है तीसरा मैच भी बहुत मुश्किल जाएगा इंडिया को बचाना।
भारत के खेल पर उठते 100 सवाल, लेकिन जवाब सिर्फ एक, और यही कि बांग्लादेश ने भारत को खेल के तीनों विभाग में जबरदस्त मात दी।
महेंद्र सिंह धोनी पर उठते सवाल। और अब देखते हैं खेलों की दुनिया में और क्या हो रहा है। आदेश कुमार गुप्त मेरे सामने बैठे हुए हैं, बताइए आदेश क्या समाचार है।
जी, भारत के बी सुमित रेड्डी और उनकी जोड़ीदार मनुअत्री का US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में मिश्रित युगल का खिताब जीतने का सपना तब टूट गया जब फाइनल में उन्हें चीन की ली जुनहुई और लियो यूचेन की जोड़ी ने 21-12, 21-16 से हरा दिया। उधर शतरंज की बिसात पर पूर्व विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद ने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट के 5वें दौर में अमरीका के हिकारू नाकामूरा से अपनी बाजी ड्रॉ खेली। इस बाजी के बाद अब आनंद संयुक्त रूप से 3रे स्थान पर हैं। पिछली बाजी में विश्वनाथन आनंद ने विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को मात दी थी। वैसे 4 जीत के साथ बुल्गारिया के वेस्लिन टपलो शीर्ष पर चल रहे हैं। वहीं बेल्जियम में आयोजित किए जा रहे विश्व हॉकी लीग सेमीफाइनल्स में पुरुष वर्ग के मुकाबलों में कल ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस को 10-0 से, ग्रेट ब्रिटेन ने बेल्जियम को 2-2 से, एक तरह से यह मुकाबला बराबरी पर समाप्त हुआ, और मलेशिया ने चीन को 3-2 से मात दी। जबकि महिला वर्ग में ऑस्ट्रेलिया ने पोलैंड को 9-0 से, नीदरलैंड्स ने दक्षिण कोरिया को 2-1 से और जापान ने फ्रांस को 6-1 से हराया। कल पुरुष वर्ग में भारत का सामना पोलैंड से और महिला वर्ग में भारत का सामना न्यूजीलैंड से होगा। इससे पहले खेले गए मुकाबलों में भारतीय पुरुष टीम ने फ्रांस को 3-2 से हराया, लेकिन महिला वर्ग में भारतीय टीम बेल्जियम से 1-0 से हार गई थी। और इसी बीच हॉकी इंडिया ने पिछले मुकाबले में फ्रांस के खिलाफ महत्वपूर्ण मौके पर गोल करने वाले देवेंद्र वाल्मीकि को 1,00,000 रुपये इनाम देने की घोषणा की है। तो रेहान, आप समझ सकते हैं कि जो भारतीय पुरुष टीम है उसका मनोबल बढ़ाने के लिए हॉकी इंडिया किस तरह से
प्रोत्साहन दे रहा है। पहली बार सुनने में आ रहा है कि गोल करने पर और मैच टूर्नामेंट के दौरान ही
बिल्कुल
इनाम देने की घोषणा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदेश कुमार गुप्त। और अब चलते चलते एक नज़र मुख्य समाचारों पर।
काबुल में सुरक्षा बलों ने अफगान संसद पर हमला नाकाम कर दिया है। अधिकारियों के मुताबिक सभी 7 हमलावर मारे गए हैं। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने कहा है कि यूरोपीय नेता ग्रीस को वित्तीय मदद देने के समझौते पर आज शायद ही राजी हों। संयुक्त राष्ट्र के जांचकर्ताओं का कहना है कि पिछले साल गजा के संघर्ष के दौरान इसराइल और फलस्तीनी लड़ाके दोनों ही युद्ध अपराधों में शामिल हो सकते हैं। घाना में पुलिस ने राजधानी अक्रा में एक बड़ी झुग्गी बस्ती के तोड़े जाने का विरोध कर रहे हजारों लोगों पर फायरिंग की है। नेटो के महासचिव येंस स्टॉल्टेनबर्ग का कहना है कि इसी सप्ताह होने वाली रक्षा मंत्रियों की मुलाकात के दौरान संस्था अपनी रैपिड रेस्पॉन्स फोर्स की शक्ति और क्षमता बढ़ाएगी। पाकिस्तान के तटीय शहर कराची में स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक गर्मी की वजह से अब तक 224 लोगों की मौत हो गई है। यहां पिछले तीन दिनों से पारा 45 डिग्री सेल्सियस के करीब है। बीबीसी समाचार।
आज के दिन भर में आज इतना ही। आपसे अगली मुलाकात होगी रात 9:30 बजे घटना चक्र कार्यक्रम में। स्टूडियो संभाला था कुणाल शर्मा ने। सभी साथियों के साथ रेहान फजल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।